हवेली की रात बाहर से जितनी शांत दिख रही थी, अंदर उतनी ही गहरी हलचल छिपाए हुए थी। अक्षरा कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। उसकी नज़रें विश्वनाथ के चेहरे पर टिकी थीं, गहरी नींद में डूबा हुआ, बेखबर, असहाय। फिर उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। सबसे पहले उसने उसका कोट उतारा, बहुत सावधानी से, जैसे कोई शोर ना हो। कोट को कुर्सी पर रखते हुए उसकी नज़रें फिर उसी पर टिक गईं। कमरे की हल्की रोशनी में विश्वनाथ का चेहरा और भी शांत लग रहा था, और उसी सुकून के बीच अक्षरा के होठों पर एक हल्की लेकिन खतरनाक मुस्कान उभरी। अब उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें समझ आएगा कि अक्षरा क्या चीज है। उसके शब्दों में दर्द भी था और एक अजीब सी जिद भी। वो आगे बढ़ी और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी, एक एक करके, धीरे धीरे। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। घड़ी की टिक-टिक तक सुनाई दे रही थी। हर गुजरते पल के साथ वो एक ऐसी कहानी बुन रही थी जिसका सच सिर्फ वही जानती थी। कुछ ही देर में सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था, बल्कि वैसा बन गया जैसा अक्षरा चाहती थी। और फिर रात बिना कोई शोर किए अपने साथ एक बहुत बड़ा राज लेकर बीत गई। सुबह हल्की सुनहरी धूप हवेली की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। श्यामली की नींद धीरे धीरे खुली। वो कुछ पल यूं ही लेटी रही, जैसे रात की थकान अब भी उसके शरीर में बाकी हो। फिर उसे याद आया, वो रत्ना देवी के कमरे में ही सो गई थी। उसने बगल में देखा, रत्ना देवी गहरी नींद में थी। श्यामली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो धीरे से उठी ताकि उनकी नींद में कोई खलल ना पड़े। एक नज़र उन्हें देखकर वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गईं। उसके कदम अपने आप उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहां विश्वनाथ था। उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक उम्मीद कि सुबह की शुरुआत उसी के साथ होगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी सांस जैसे वहीं थम गई। कमरे का मंजर उसकी आंखों में जम गया। विश्वनाथ बिस्तर पर था और उसके पास अक्षरा बैठी थी। अक्षरा की हालत बिखरी हुई थी। उसका दुपट्टा एक तरफ पड़ा था, कुछ गहने जमीन पर बिखरे थे, बाल उलझे हुए, और वो रो रही थी धीरे धीरे टूटती हुई आवाज में। श्यामली की आंखें फैल गईं, चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये क्या? उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई। उसके कदम लड़खड़ा गए। वो दरवाजे के सहारे खुद को संभालने लगी। तभी पास के कमरे से गुजर रही अदिति की नज़र उस पर पड़ी। श्यामली, वो चौंकी। वो तुरंत उसके पास आई, क्या हुआ? लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कमरे के अंदर गई, वो भी वहीं रुक गई। ओह माय गॉड, उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। उसी वक्त अक्षरा के रोने की आवाज थोड़ी और तेज हो गई। वो आवाज सीधे विश्वनाथ की नींद तक पहुंची। वो हल्का सा हिला, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। पहले सब धुंधला था, फिर उसकी नज़र खुद पर गई, फिर अक्षरा पर, फिर कमरे की हालत पर, और आखिर में दरवाजे पर खड़ी श्यामली पर। उसका चेहरा एकदम उड़ गया। ये क्या? वो घबरा कर उठ बैठा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अक्षरा अचानक उठी और दौड़कर श्यामली के पास आई। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। श्यामली, उसकी आवाज़ टूट रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या हुआ? उसकी सिसकियाँ और तेज हो गईं। विश्वनाथ ने मेरे साथ जबरदस्ती की। ये शब्द जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठे। अदिति ने तुरंत श्यामली की तरफ देखा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। अक्षरा ने रोते हुए आगे कहा, लेकिन इसमें उसकी गलती नहीं है, वो बहुत नशे में था। वो बार बार कह रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। विश्वनाथ जैसे जड़ हो गया। नहीं, उसने अचानक कहा, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन सच्चाई भी। मुझे कुछ याद नहीं, उसने अपना सिर पकड़ लिया। मैं तो बस सो गया था। उसकी नजरें सीधे श्यामली पर टिक गईं। श्यामली, तुम जानती हो ना मुझे। उसकी आंखों में डर था और एक उम्मीद भी, लेकिन श्यामली कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी नजरें कभी अक्षरा पर टिकती, कभी विश्वनाथ पर, और फिर उस कमरे के बिखरे हुए हालात पर। उसका दिल, उसका भरोसा, सब कुछ जैसे एक ही पल में हिल गया था। अदिति ने धीरे से उसका कंधा थामा। श्यामली, संभालो खुद को, लेकिन इस वक्त संभलना आसान नहीं था। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ शक,
एक तरफ विश्वास, दूसरी तरफ हालात, और बीच में खड़ी शामली, जिसकी दुनिया एक पल में बिखरने लगी थी। कमरे में अब कोई आवाज नहीं थी, बस तीन लोगों की सांसें और एक सच्चाई जो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई थी, जहां भरोसा इम्तिहान पर था और सच अभी भी परछाइयों में छिपा हुआ था। हवेली का हॉल, जहां कुछ देर पहले तक रौनक थी, अब भारी सन्नाटे और तनाव से भरा हुआ था। पूरा परिवार वहीं इकट्ठा था। बीच में खड़ी थी शामली। उसका रो रो कर बुरा हाल था। आंखें सो चुकी थी, सांसें बार बार अटक रही थी। अदिति उसके पास खड़ी थी, उसका हाथ थामे हुए। शामली, प्लीज खुद को संभालो। आर्यन भी उसके पास खड़ा था। देखो, अभी कुछ भी फाइनल मत सोचो। लेकिन शामली जैसे सुन ही नहीं रही थी। उसकी नजरें बार बार बस एक ही दिशा में जा रही थी, जहां थोड़ा दूर खड़ा था विश्वनाथ। वो वहीं खड़ा था, जैसे आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही हो। उसकी आंखों में बेचैनी थी, पछतावा नहीं बल्कि एक डर कि वो जिसे सबसे ज्यादा चाहता है वो उससे दूर हो रही है। तभी अक्षरा की आवाज गूंजी, बस करो। सब लोग, सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। अक्षरा की आंखें अब भी नम थीं, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती थी। इसमें विशु की गलती नहीं है, वो धीरे धीरे बोली। वो नशे में था, उसे होश ही नहीं था। उसने एक पल के लिए विश्वनाथ की तरफ देखा। वो बार बार कह रहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सुनते ही शामली की सिसकियां फिर तेज हो गईं। अदिति ने उसे और कसकर पकड़ लिया। शामली, प्लीज। लेकिन माहौल और भारी हो चुका था। तभी अक्षरा की माँ गुस्से में खड़ी हो गईं। बस बहुत हो गया, उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। ये कोई छोटी बात नहीं है, उन्होंने सीधे विश्वनाथ की तरफ इशारा किया। अगर मेरी बेटी ही पसंद थी तो इस लड़की को इस घर में क्यों लाया गया? उनके शब्द सीधे दिल पर चोट कर रहे थे। विश्वनाथ ने कुछ कहना चाहा, आंटी मैं, लेकिन उन्होंने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं, अब कोई सफाई नहीं, जो होना था वो हो चुका है। हॉल में बैठे हर शख्स के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, कोई हैरान, कोई गुस्से में, कोई चुप। तभी रत्ना देवी धीरे धीरे उठी, उनके चेहरे पर गहरा दुख था। उन्होंने एक नजर चारों तरफ डाली, शामली, विश्वनाथ, अक्षरा, और फिर उनकी आंखें भर आईं। ये क्या, उन्होंने बहुत धीमे से कहा। उनकी आवाज में टूटन साफ थी। सुषमा देवी भी पास ही बैठी थी, चुप, गहरी सोच में डूबी हुई, जैसे वो इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रही हों। हॉल में अब कोई शोर नहीं था, बस इल्जाम, आंसू और रिश्तों के टूटने की आहट। और इसी खामोशी के बीच किसी को भी ये नहीं पता था कि सच क्या है और झूठ क्या।